देन फिर फ्रैकलिंग में एक्सिलरी फ्रैकलिंग है और इंग्वाइंस और इंग्वाइनल रीजन और ग्रॉइंस वगैरह की फ्रैकलिंग है, ठीक है। और उसके अलावा अगर जो है ना यही फ्रैकलिंग एक्सटेंड होती है अलोंग द स्पाइन, तो इसका मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट भी है। देन फिर लिश नोड्यूल्स हैं। लिश नोड्यूल्स आर डोम शेप्ड लीजन्स प्रेजेंट अराउंड द आयरिस, उसके हेमाटोमा को शो करता है। आइदर दीज आर एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन ये जो है ना डायग्नोसिस में हेल्प करता है, दूसरे डिफरेंशियल सेज को सेपरेट करने में हेल्प करता है। और जो NF2 है उनके अंदर लिश नोड्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और ना ही न्यूरोफाइब्रोमास प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद है स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ में, जैसे कि मैंने क्राइटेरिया में बताया था, सिफेनॉइड हाइपोप्लेजिया और थिनिंग ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। लेकिन जो लेस कॉमन स्केलेटल फाइंडिंग्स है उसके अंदर किफोस्कोलायोसिस है, शॉर्ट स्टैच्योर और मैक्रोकेफेली है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स हैं। उसके बाद ओरल कैविटी के अंदर अगर हम आएँ तो ओरल कैविटी के अंदर जो है ना वो न्यूरोफाइब्रोमास हो सकते हैं, पेडनक्यूलेटेड या पेपिलोमेटस न्यूरोफाइब्रोमास कैन बी प्रेजेंट ऑन द पैलेट, ऑन द गम्स, ऑन द ओरल कैविटी, ये टंग में, और मैक्रोग्लॉसिया भी हो सकता है एसिमेट्रिकल, ठीक है। देन फिर उसके बाद जो है ना विजरल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सा विजरा इन्वॉल्व है उसके मुताबिक इसके फीचर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर CNS की बात करें तो उसमें मैंने अभी बताया था कि मैक्रोकेफेली हो सकता है। उसके अलावा पेशेंट को हेडेक हो सकता है, हाइपरटिलोरिज्म, CNS के अपने जो ट्यूमर्स हैं एस्ट्रोसाइटोमा और श्वानोमा वगैरह वो है। फिर प्रेजेंट कैसे करेगा, लर्निंग डिफ़िकल्टी, सीजर्स, एपिलेप्सी, डेवलपमेंटल ग्रोथ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, स्पीच इम्पेयरमेंट हो सकती है, हेडेक हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हार्ट में या कार्डियोपल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, और रीनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, रीनो वास्कुलर हाइपरटेंशन। किडनी का अपना ट्यूमर भी हो सकता है, ठीक है, वर्म्स ट्यूमर। देन फिर उसके बाद जो है ना वो एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटी है, जिसके अंदर एक्रोमेगैली, प्रीकोशियस प्यूबर्टी, एडिसन्स डिजीज़ और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, गायनेकोमास्टिया, फियोक्रोमोसाइटोमा, सॉरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा, हाइपो नहीं होगा। फिर लोअर यूरिन ट्रैक सिम्टम्स हो सकते हैं, GI इन्वॉल्वमेंट में ब्लीडिंग भी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, ठीक है। फिर मैलिग्नेंट डिजीज़ में हर सिस्टम के अपने अपने ट्यूमर्स हैं, CN ऑप्टिक ग्लायोमा है मोस्ट कॉमनली CNS के ट्यूमर्स के अलावा, श्वानोमा, एस्ट्रोसाइटोमा हो सकता है, आईज़ में ऑप्टिक ग्लायोमा है, रेटिनोब्लास्टोमा है, रैबडोमायोसार्कोमा है, न्यूरोफाइब्रोमास के अंदर भी सार्कोमेटिस चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ है वो है मैलिग्नेंट पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर्स, जिसमें क्या होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग लीजन्स होते हैं ना वो बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत पेनफुल हो जाते हैं। उससे हमने ये इन दोनों चीज़ अगर कोई इस तरह के लीजन्स आए ना उसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना होगा कि या तो वो मैलिग्नेंट पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर है या फिर उस लीजन के अंदर ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। उसके अलावा मैलिग्नेंट मेलानोमा हो सकता है और लिकीमिया हो सकता है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स के मैलिग्नेंसीज हैं जिसमें हो सकते हैं, स्किन के, CNS, आईज और हार्ट, ये इसमें किडनीज हैं और ब्लड का, ठीक है।